दानियल की पुस्तक संख्या 75 भविष्य सूचक समानताएं यशायाह के संदेश से लेकर आधुनिक युग के प्रकटी मत कार्य।
जब यशायाह 65 वर्षों द्वारा प्रतीकित संदेश अध्याय 7 पद 8 यरूशलेम के दुष्ट नेता को प्रस्तुत करता है तो वो ये 712 ईसा पूर्व में धोबी के मैदान और ऊपरी तालाब की जल नलिका के छोर पर करता है। 712 ईसा पूर्व 1863 का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यीशु सदैव प्रारंभ के द्वारा अंत को दर्शाते हैं। 1863 का विद्रोह बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसके प्रारंभ से ही दर्शाते हैं। 1863 कानूनी रूप से पंजीकृत लाओदीकिया की एडवेंटिस्ट कलीसिया की शुरुआत थी और रविवार के कानून के महाभूकंप पर वो कलीसिया उजाड़ छोड़ दी जाती है। जब वही सरकार सातवें दिन आराधना को कानूनी रूप से निषिद्ध कर रही होगी तब राज्य द्वारा कानूनी रूप से शासित न कि इसके उलट की कलीसिया राज्य को नियंत्रित करे एक निगम सातवें दिन के सप्त का पालन जारी कैसे रख सकता है। मसीह के सेवा काल की शुरुआत और अंत में उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया। पहले मंदिर शुद्धिकरण में मसीह ने बताया कि नेताओं ने उसके पिता का मजगोर डाकुओं की खो बना दिया था, परंतु मंदिर के अंतिम शुद्धिकरण में उन्होंने बताया कि उनका घर उनके लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। प्राचीन इसराइल आधुनिक इसराइल का उदाहरण है। एडवेंटवाद के आरंभ में उन्होंने मिलरवादी मंदिर की स्थापना की और उसका शुद्धिकरण किया, परंतु अंतिम शुद्धिकरण में अर्थात 144,000 के शुद्धिकरण में लाओदीकियाई एडवेंटवाद को वो अपने मुंह से उगल देता है और तब उनका घर उजाड़ छोड़ दिया जाता है। यशाया राजा अहाज का सामना करते समय धोबी के मैदान के पास है। धोबी का मैदान उस शुद्धिकरण का प्रतीक है जिसे वाचा का दूत पूरा करता है, जो अचानक अपने मंदिर में आता है और धोबी का साबुन की तरह लेवी के पुत्रों को शुद्ध करता है। ये शुद्धिकरण एडवेंटिज्म्स की शुरुआत में पूरा किया गया था और अंत में ये फिर से पूरा किया जाता है।
देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा और वो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आएगा, अर्थात वाचा का दूत जिससे तुम प्रसन्न होते हो। देखो, वो आएगा, सेनाओं का यहोवा कहता है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो प्रकट होगा तब कौन ठहर सकेगा, क्योंकि वो चांदी को गलाने वाली आग के समान और धोबियों के साबुन के समान है। वो चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान बैठ जाएगा, और वो लेवी की संतानों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी के समान निर्मल करेगा, ताकि वे यहोवा के लिए धर्म के साथ भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी बलि लगेगी जैसी प्राचीन दिनों में और पूर्वकाल के वर्षों में लगती थी। मलाकी 3:1-4।
यशाया अपने पुत्र के चिन्ह के साथ अहाज से मिलता है, जिसका नाम इस बात का प्रतीक है कि अंतिम दिनों में एक अवशेष लौट आएगा। अवशेष वे हैं जो लौटते हैं। मंदिर की शुद्धि के इतिहास के दौरान यशाया दुष्ट राजा अहाज से मिलता है, जो मिलेराइट इतिहास में 118-144 में आरंभ हुई और 163 में अवज्ञा के कारण उसका समापन कर दिया गया। अंतिम दिनों में ये शुद्धि 144,000 के मुहरबंद किए जाने का इतिहास है। यदि मिलेराइटों ने 144 के बाद प्रकट हुई ईश्वरीय प्रबंध का अनुसरण किया होता तो वे कार्य को पूरा कर लेते।
यदि 1844 की महान निराशा के बाद एडवेंटिस्टों ने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा होता और परमेश्वर के खुलते हुए प्रबंध में एकजुट होकर आगे बढ़े होते, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश स्वीकार करके और पवित्र आत्मा की शक्ति में उसे संसार को प्रचार करते, तो वे परमेश्वर का उद्धार देख लेते। प्रभु उनके प्रयासों के साथ सामर्थ्य से कार्य करता, कार्य पूरा हो गया होता और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देने के लिए मसीह अब तक आ चुका होता। परंतु उस निराशा के बाद आए संदेह और अनिश्चितता के काल में बहुत से एडवेंट विश्वासियों ने अपना विश्वास छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य में बाधा पड़ी और संसार अंधकार में छोड़ दिया गया। यदि समूचा एडवेंटिस्ट समुदाय परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास पर एक हो जाता तो हमारा इतिहास कितना भिन्न होता। इवेंजेलिज्म 695।
परमेश्वर के खुलते हुए प्रबंध में एकजुट होकर आगे बढ़ते रहना, न कर पाने की असफलता ने उन्हें 1856 तक लाओदीकियाई अवस्था में पहुंचा दिया और उसके बाद 1863 के विद्रोह ने मरुभूमि में भटकने की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि प्राचीन इसराइल में तब देखा गया था जब वे अपनी 10वीं और अंतिम परीक्षा में असफल हुए थे और फिर उन्हें आने वाले 40 वर्षों तक मरुभूमि में मरने के लिए ठहरा दिया गया था। यशाया का पुत्र ये प्रतिज्ञा देता है कि अंतिम दिनों में जब मंदिर की अंतिम शुद्धि होगी तब एक शेष लौट आएगा। उनके लौटने का उदाहरण यिर्मयाह से मिलता है, जिसे ये वादा किया गया था कि यदि वो लौटे तो वो परमेश्वर का प्रहरी बन जाएगा। 144,000 वे हैं जो एक निराशा से लौट आए हैं। जो 144,000 हैं उन्होंने एक निराशा का अनुभव किया है और अपने प्रभु की प्रतीक्षा की है। उन्हें मिलेराइट इतिहास में बुद्धिमान कुवारियों के द्वारा प्रतीकित किया गया है और आरंभिक तथा अंतिम दोनों इतिहासों में मध्यरात्रि की पुकार के समय पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के दौरान दो छड़े जोड़कर एक राष्ट्र बनाया जाता है। दुष्ट राजा अहाज यहूदा के उस नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है जिसने संदेश तो सुना होगा पर यशाया द्वारा प्रस्तुत संदेश को अस्वीकार कर देगा और ऐसा करते हुए वे ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, फैसेंगे और पकड़े जाएंगे। वे ही हैं जो उनसे पूछते हैं जिनके पास आत्माओं से संपर्क होता है और उन जादूगरों से जो फुसफुसाते और बड़बड़ाते हैं। ये उस आत्मवाद के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है जिसके अधीन वे दो थिसलुनिकियों में वर्णित प्रबल भ्रम को ग्रहण करते समय हो जाते हैं। ईसा पूर्व 745 में अहाज द्वारा यशाया के संदेश का अस्वीकार 1863 से मेल खाता है जब मिलर के संदेश को अस्वीकार कर दिया गया। यशाया मिलर का प्रतिरूप है और यशाया तथा मिलर दोनों का संदेश 7 बार पर आधारित था, जिसका आधार बिंदु यशाया अध्याय 7 के 8वें पद में मिलता है। मिलर का पुत्र यशाया का पुत्र उन अंतिम दिनों में आने वाले एलिया आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। अहाज के अस्वीकार के कारण उसके विरुद्ध की गई घोषणा में ये भविष्यवाणी भी शामिल थी कि वो उत्तर के राजा द्वारा पराजित होगा जो अंतिम दिनों में पोपा तंत्र के अधीन शासित आधुनिक रोम का त्रिविध संघ है।
और प्रभु ने मुझसे फिर कहा, क्योंकि इस प्रजा ने शिलो आ के धीरे बहने वाले जल को अस्वीकार किया है और रीजन तथा रैमलिया के पुत्र में आनंद मानती है, इसलिए अब देखो प्रभु उन पर नदी के प्रबल और प्रचुर जल को चढ़ा लाता है, अर्थात अश्शूर का राजा और उसका सारा वैभव, और वो अपनी सब धाराओं पर उमड़ आएगा और अपने सब किनारों को लान जाएगा, और वो यहूदा से होकर निकलेगा, वो उमड़ेगा और आगे बढ़ जाएगा, गले तक पहुंच जाएगा, और उसके पंखों का फैलाव तेरे देश की चौड़ाई को भर देगा, हे इम्मानुएल। यशाया 8:5-8।
यशाया ने दुष्ट राजा आहद से ऊपरी तालाब की नहर के छोर पर मुलाकात की और यद्यपि बाइबल के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि ऊपरी तालाब वही तालाब था या नहीं जो मसीह के समय का सिलोआम का तालाब था, फिर भी यशायाह की भविष्यवाणी का संदर्भ सभी संदेह दूर कर देता है, क्योंकि यशायाह बताता है कि उत्तर का राजा आहज पर चढ़ाने वाला था क्योंकि उसने इस शिलोहे के जल को ठुकरा दिया था जो धीरे धीरे बहता है। शिलोहे पुराना नियम में सिलोआम के लिए प्रयुक्त नाम है। सिलोआम के कुंड पर ही यीशु ने अंधे व्यक्ति को चंगा किया था और दुष्ट राजा आहाज 1363 में भी और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय भी चंगे होने से इनकार करने वाले अंधे लाओदीकियाई नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शिलोआह और सिलोआम दोनों का अर्थ भेजा हुआ है और एक संदेश पिता से पुण्य के पास भेजा गया जिसने फिर उसे गब्रियल और पवित्र स्वर्गदूतों को दिया ताकि वे उसे यशाया तक पहुंचाए, और यशाया उस भेजे हुए संदेश को जो स्वर्ग से था एक अंधे लाओदीकियाई नेता के पास ले आया। ऊपरी तालाब की वो नाली जहां यशाया ने संदेश दिया था उस स्थान का प्रतीक है जहां पवित्र आत्मा की वर्षा परमेश्वर की प्रजा तक पहुंचाई जाती है, जैसा कि जकरिया के दर्शन की सोने की नलियों द्वारा अथवा याकूब के स्वप्न की सीढ़ी द्वारा भी दर्शाया गया है।
जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो जकरिया अध्याय 3 और 4 तथा 4:12-4 में दर्शाया गया है। और मैंने फिर उत्तर दिया और उससे कहा, ये 2 जैतून की डालियां क्या हैं जो 2 सोने की नलियों के द्वारा अपने में से सोने का तेल उंडेलती हैं? उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये 2 अभिषिक्त हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हैं। प्रभु संसाधनों से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी साधन की कमी नहीं है। हमारे विश्वास की कमी, हमारी सांसारिकता, हमारी खोखली बातें, हमारा अविश्वास जो हमारी बातचीत में प्रकट होता है, इन्हीं के कारण हमारे चारों ओर अंधकारमय छायाएं घिराती हैं। हमारी वाणी और आचरण में मसीह उस सर्वथा मनोहर 10,000 में श्रेष्ठतम के रूप में प्रकट नहीं होते। जब आत्मा निरर्थक दंभ में स्वयं को ऊंचा उठाने पर संतुष्ट हो जाती है, तब प्रभु का आत्मा उसके लिए बहुत कम कर पाता है। हमारी निकटदर्शी दृष्टि छाया को तो देखती है, पर उसके पार की महिमा को नहीं देख पाती। स्वर्गदूत चारों पवनों को थामे हुए हैं, उन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है जो बंधन तोड़कर सारी पृथ्वी पर दौड़ जाने को उतावला है, अपनी राह में विनाश और मृत्यु साथ लिए हुए। क्या हम शाश्वत संसार की कगार पर ही सोए रहें? क्या हम सुस्त, ठंडे और मृत बने रहें? ओह, काश हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा और श्वास उसके लोगों में फूंकी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जिएं। हमें ये देखना आवश्यक है कि मार्ग संकरा है और द्वार संकीर्ण है, परंतु जब हम उस संकीर्ण द्वार से होकर गुजरते हैं तो उसकी व्यापकता की कोई सीमा नहीं रहती। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस, वॉल्यूम 20, 200 सरदन, 200 सबरा।
सुनहरा तेल परम बेश्वर की आत्मा की वे संदेश जो ऊपरी सरोवर से उस जलवाहिनी के माध्यम से नीचे आते हैं, अर्थात 2 सोने की नलियां जो 2 गवाह है। बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा, या पुराना और नया नियम, या व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं, या मूसा और एलिया।
समस्त पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े अभिषिक्त जनों को वही स्थान प्राप्त है जो कभी शैतान को आवरण करने वाले करूब के रूप में दिया गया था। उसके सिंहासन को घेरे हुए पवित्र प्राणियों के द्वारा प्रभु पृथ्वी के निवासियों के साथ निरंतर संचार बनाए रखता है। सुनहरा तेल उस अनुग्रह का प्रतीक है जिसके द्वारा परमेश्वर विश्वासियों के दीपकों को भरा रखता है, ताकि वे टिमटिमा कर बुझ न जाएं। यदि ऐसा ना होता कि ये पवित्र तेल स्वर्ग से परमेश्वर की आत्मा के संदेशों के द्वारा उंडेला जाता है, तो दुष्टता की शक्तियों का मनुष्यों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता। जब हम उन संदेशों को ग्रहण ही करते जिन्हें परमेश्वर हमारे पास भेजता है, तब उसका अनादर होता है। इस प्रकार हम उस सुनहरे तेल को अस्वीकार करते हैं जिसे वो हमारी आत्माओं में उंडेलना चाहता है, ताकि वो अंधकार में रहने वालों तक पहुंचाया जाए। जब ये पुकार सुनाई देगी, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए निकलो, तब जिन्होंने पवित्र तेल ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अपने हृदयों में मसीह के अनुग्रह को संजोकर नहीं रखा है, वे मूर्ख कुंवारियों के समान पाएंगे कि वे अपने प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। उस तेल को प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें स्वयं नहीं है और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। परंतु यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की याचना की जाए, यदि हम मूसा के समान विनती करें, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाएगा। सुनहरी नलिकाओं के द्वारा वो सुनहरा तेल हम तक पहुंचाया जाएगा, न बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। धार्मिकता के सूर्य की उज्ज्वल किरणों को ग्रहण करके परमेश्वर की संतानें जगत में ज्योतियों के समान चमकती हैं। रिव्यू एंड हेरल्ड, जुलाई 20, 1897।
जिस संदेश को अहाज अस्वीकार कर रहा था, वो मध्य रात्रि की पुकार का संदेश था, जो अंततः मसीह के दूसरे आगमन में परिणत हो जाता। यदि लाओदिकिया के नेतृत्व ने 1856 में उन्हें भेजा गया लाओदिकिया के लिए संदेश स्वीकार कर लिया होता, वो संदेश तब बढ़कर प्रबल पुकार बन जाता और परमेश्वर के लोग कार्य पूरा कर चुके होते और शांति में होते। इसके बजाय वे उस उल्टी की ओर लौट गए जिससे वे छुड़ाए गए थे। यशाया और आहाज को धोबी के मैदान के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होने के रूप में दर्शाया गया है। जिसे मलाकी अध्याय 3 में वाचा का दूत पूरा करता है। वे प्रतीकात्मक रूप से उस स्थान पर स्थित हैं जहां जकरिया के दर्शन में तेल एक संदेश उंडेला जा रहा है और अंतिम दिनों में आहाज के प्रति यशाया का संदेश तीसरे हाय अर्थात इस्लाम का संदेश है। ये सात गड़गड़ाहटों के छिपे हुए इतिहास का संदेश है। ये वो संदेश है कि आठवां सातों में से है। ये दाख की बारी का संदेश है। ये सत्य का संदेश है। ये सब यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य तत्व हैं जो अंतिम दिनों में धोबी के मैदान द्वारा दर्शाए गए शुद्धिकरण को उत्पन्न करते हैं। ये सात काल का संदेश था और है जो मिलर की नींव के पत्थर से कोने के सिरे तक बदलता है, क्योंकि वो पहला सत्य था और इसलिए वही अंतिम सत्य होना चाहिए। 1863 ने उस शुद्धिकरण प्रक्रिया के समापन को चिह्नित किया जो 22 अक्टूबर 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ आरंभ हुई और अंततः 1856 में सात काल के प्रकाश तक पहुंची। 1844 में 2300 वर्षों के प्रकाश ने एक ऐसी शुरुआत को चिह्नित किया जो उस अंत तक ले गई जिसे 2520 वर्षों ने चिह्नित किया। फिर भी आरंभ और अंत में लोदिकिया की अंधता दोनों दर्शनों के संबंध को देखने से इनकार करती है। 1863 उस शुद्धिकरण प्रक्रिया के समापन का प्रतिनिधित्व करता है जो हर बार होती है जब किसी संदेश की मुहर खोली जाती है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की मुहर 22 अक्टूबर 1844 को खोली गई थी। तीसरे स्वर्गदूत का वो प्रकाश जिसकी मुहर 1884 में खोली गई कोई एकमात्र प्रकाश नहीं था, वही था जिसे बहन व्हाइट तीसरे स्वर्गदूत का प्रगतिशील प्रकाश कहती हैं। तीसरे स्वर्गदूत का ये प्रगतिशील प्रकाश 1884 में आरंभ हुआ और अनुग्रह का समय समाप्त होने तक आगे बढ़ता रहता है, पर जब ये पहली बार आया और जब ये अंततः समाप्त होगा तब तीसरे स्वर्गदूत का एक विशिष्ट परीक्षण काल होता है। ये आरंभ और समापन के परीक्षण काल उस परीक्षण प्रक्रिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे दानियल ने ज्ञान की वृद्धि कहा है। यही तीसरे स्वर्गदूत का प्रगतिशील प्रकाश भी है। आरंभिक परीक्षात्मक प्रक्रिया 1843 में शुरू हुई और आगे बढ़ती हुई ज्योति ज्ञान में बढ़ती रही जब तक कि वो 1846 में अपने समापन तक नहीं पहुंच गई। परीक्षा काल की आरंभिक ज्योति और समापन की ज्योति दानियल अध्याय 8 के पद 13 और 14 के दो दर्शन हैं जो एडवेंटिज्म के आधार और केंद्रीय स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले स्वर्गदूत का परीक्षण काल 11 अगस्त 1840 को शुरू हुआ और 19 अप्रैल 1844 को पहली निराशा पर समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरे स्वर्गदूत का परीक्षण काल शुरू हुआ और 22 अक्टूबर 1844 तक चलता रहा। तब तीसरा स्वर्गदूत आया और तीसरे स्वर्गदूत का परीक्षण काल 1863 में लाओदिकियाई एडवेंटिज्म द्वारा तीसरे स्वर्गदूत के प्रकाश को अस्वीकार करने तक चलता रहा। मिलरावादी एडवेंटवाद के लिए तीसरे स्वर्गदूत के परीक्षण काल का एक आरंभ और एक अंत था, और आरंभ और अंत एक ही बात का प्रतिनिधित्व करने चाहिए, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसके आरंभ से चित्रित करते हैं। तीसरे स्वर्गदूत की बढ़ती हुई ज्योति का उद्घाटन दानियल के 8वें अध्याय के 14वें पद में प्रकट होने द मारे विजन के प्रकाश के रूप में था। तीसरे स्वर्गदूत की बढ़ती हुई ज्योति का अंत 13वें पद में पवित्र स्थान और सेना के पद दलन द छाजौन विजन के प्रकाश के रूप में था। ये दोनों दर्शन भविष्यवाणी की दृष्टि से परस्पर गूंथे हुए हैं।
तब तुम 7वें महीने के 10वें दिन अर्थात प्रायश्चित के दिन जयंती की तुरही बजवाओ और अपने सारे देश में तुरही का नाद कराओ। लेवीय व्यवस्था 25:9।
प्रायश्चित के दिन जो 22 अक्टूबर 1884 था, जिस तुरही को बजाया जाना था वह जुबली की तुरही जो 7 वर्षों के पवित्र चक्र का प्रतिनिधित्व करती है जो मिलाकर 2520 दिन होते हैं। प्रभु का उद्देश्य था कि वो प्राचीन इसराइल को सीधे प्रतिज्ञा के देश में ले जाए, पर उनके विद्रोह ने ऐसा होने नहीं दिया। प्रभु का उद्देश्य था कि वो आधुनिक इसराइल को भी सीधे प्रतिज्ञा के देश में ले जाए, पर विद्रोह ने ऐसा होने से रोक दिया। यदि आधुनिक इसराइल तीसरे स्वर्गदूत के बढ़ते हुए प्रकाश के प्रति आज्ञाकारी रहे होते तो वे संसार को चेतावनी दे चुके होते और प्रभु 100 से अधिक वर्ष पहले ही लौट आए होते। ऐसा होने के लिए प्रभु को मिलोराइटों के बीच एक रूपांतरण करना पड़ता और उस रूपांतरण को पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का रहस्य कहा जाता है। यदि एडवेंटवाद ने तीसरे स्वर्गदूत की आगे बढ़ती ज्योति का अनुसरण किया होता तो जुबली की तुरही अंत तक बचती रहती, क्योंकि सातवीं तुरही के बजने के दिनों में ही परमेश्वर का रहस्य पूरा होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में वो तुरही जो जुबली की तुरही है और साथ ही तीसरी हाय की तुरही भी 22 अक्टूबर 1844 को बजना आरंभ हुआ।
और वो स्वर्गदूत जिसे मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा, उसने स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाया और उसकी शपथ खाई जो युगानुयुग तक जीवित है, जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया, कि अब समय और न रहेगा, परंतु सातवें स्वर्गदूत के स्वर के दिनों में जब वो बजाना आरंभ करेगा तब परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया था। प्रकाशित वाक्य 10:5-7।
22 अक्टूबर 1844 को जो परीक्षात्मक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो तीसरे स्वर्गदूत के उन्नतिशील प्रकाश थी, वो दानियल अध्याय 8:14 के प्रकाश से आरंभ हुई और दानियल अध्याय 8:13 के प्रकाश पर समाप्त हुई। ये 14 के उत्तर से शुरू हुई और 13 के प्रश्न पर समाप्त हुई। वे 19 वर्ष उत्तर और दक्षिण के बीच हुए गृह युद्ध के दौरान वास्तविक यहूदा के राजा आहाज के लिए यशाया की चेतावनी के संदेश के आगमन से प्रतिरूपित थे। वे 19 वर्ष उत्तर के राजा द्वारा इसराइल को गुलामी में ले जाने के साथ समाप्त हुए। वे 19 वर्ष 1844 में तीसरे स्वर्गदूत के आगमन से लेकर 1863 के विद्रोह तक के काल का प्रतिरूप थे। तीसरे स्वर्गदूत की बढ़ती हुई ज्योति यशाया के संदेश द्वारा दर्शाई गई थी। उस आगे बढ़ते प्रकाश के अस्वीकार ने मिलराइट आंदोलन को समाप्त कर दिया और उस परीक्षण काल में फिलाडेल्फियाए मिलराइट आंदोलन लाओडिसियन कलीसिया में परिवर्तित हो गया। 750 ईसा पूर्व में जो 19 वर्षीय अवधि शुरू हुई और 1844 में जो 19 वर्षीय अवधि शुरू हुई, दोनों ही अंतिम दिनों में एक परीक्षण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात तीसरे स्वर्गदूत के आगे बढ़ते प्रकाश का अंतिम परीक्षण काल। उस अंतिम परीक्षण प्रक्रिया में परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा। 144,000 वे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं, लौटते हैं और मुहर बंद किए जाते हैं।
गवाही को बांध दो, मेरे चेलों में व्यवस्था पर मुहर लगा दो, और मैं यहोवा की बाँट जूहूंगा जो याकूब के घराने से अपना मुख छिपाता है, और मैं उसे ढूंढूंगा। देखो, मैं और वे बच्चे जिन्हें यहोवा ने मुझे दिए हैं इसराइल में चिन्ह और चमत्कार के लिए हैं, सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत में वास करता है। यशाया 8:16।
अंतिम दिनों में तीसरे स्वर्गदूत की अग्रसर ज्योति का अंतिम परीक्षण काल वहीं से आरंभ हुआ जहां प्रारंभिक परीक्षण काल आरंभ हुआ था। ये तब आरंभ हुआ जब यीशु ने अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और घोषित किया कि अब समय और न रहेगा। वो घोषणा 22 अक्टूबर 1844 को हुई जब सातवीं तुरही ने सात का पवित्र चक्र समाप्त होने पर जुबली की घोषणा की। 7 वर्षों का चक्र जो 7 बार दोहराया गया वास्तव में 49 वर्ष या 2520 दिन था। 1985 8,46,000 के आंदोलन में अंत का समय को चिन्हित करता है और 1985 1883 के विद्रोह से आरंभ हुए 126 वर्षों की समाप्ति को चिन्हित करता है। 1,44,000 का आंदोलन अंत का समय में 7 काल के प्रतीक के साथ शुरू हुआ, क्योंकि 126 1260 का दशमांश है जो बदले में 2520 का आधा है। यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसी बात की शुरुआत के साथ निरूपित करते हैं और 1,44,000 के आंदोलन की शुरुआत 7 बार के एक प्रतीक से चिन्हित थी, जैसा कि आंदोलन के अंत में भी है। 7वें स्वर्गदूत के बजाने के वे दिन जिनमें परमेश्वर का रहस्य पूरा होता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3.5 दिनों की समाप्ति पर आरंभ हुए। 7वीं तुरही जो तीसरी हाय भी है ने 7 अक्टूबर 2023 को अपना दूसरा स्वर बजाया और अब परमेश्वर का रहस्य पूरा हो रहा है, जैसा कि उसने अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया है। आंदोलन का अंत भी सात बार के एक प्रतीक से चिह्नित है, जैसे इसी आंदोलन की शुरुआत थी। 1789 में अंत के समय पर उत्तरी राज्य के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध के सात समय समाप्त हो गए और मिलेराइटो के आंदोलन के अंत में सात समय से संबंधित सत्यों का अस्वीकार 4347 के विद्रोह को चिह्नित किया। यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से दर्शाते हैं और पहले स्वर्गदूत का आंदोलन मिलेराइटो तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन 144,000 को दर्शाता है। दोनों आंदोलनों की शुरुआत सात समय से होती है और अंत भी सात समय पर होता है। आप ऐसी बातें गढ़ नहीं सकते। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, उन्हें संसार के आत्मलिप्त लपवीयी सिद्धांतों को अपनाने के लिए परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे इसे वहन नहीं कर सकते, और यदि वे कर भी सकते तो मसीह सदृश सिद्धांत उसे अनुमति नहीं देंगे। विविध प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। वह किसे ज्ञान सिखाए और किसे वो उपदेश समझाए, उन्हें जो दूध से छुड़ाए गए हैं और स्तनों से अलग किए गए हैं, क्योंकि आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा होना चाहिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, वे माता पिता धैर्यपूर्वक प्रभु का वचन बच्चों के सामने रखें और उसे उनके सामने बनाए रखें, क्योंकि हकलाती बोली और एक दूसरी भाषा में वो इस प्रजा से बोलेगा जिनसे उसने कहा, ये वो विश्राम है जिससे तुम थके हुओं को विश्राम दे सकते हो, और ये ताजगी है। फिर भी वे सुनना नहीं चाहते थे, परंतु उनके लिए प्रभु का वचन बन गया, आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, ताकि वे जाएं और पीछे की ओर गिरे और टूट जाएं और फंसें और पकड़े जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के उस वचन पर ध्यान नहीं दिया जो उनके पास आया था।
इसका अर्थ उन लोगों से है जिन्होंने निर्देश नहीं पाया, पर अपनी ही बुद्धि को अधिक माना और अपने ही विचारों के अनुसार स्वयं काम करने को चुना। प्रभु ऐसे लोगों को परीक्षा देता है कि वे या तो उसके परामर्श का पालन करने का निर्णय लें या इनकार करके अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार करें, और तब प्रभु उन्हें उसके सुनिश्चित परिणाम पर छोड़ देता है। हमारे सब मार्गों में, परमेश्वर की सारी सेवा में, वो हमसे कहता है, मुझे अपना हृदय दे। परमेश्वर को समर्पित और शिक्षाग्राही आत्मा ही चाहिए। प्रार्थना को उसकी श्रेष्ठता इस बात से मिलती है कि वो प्रेमपूर्ण आज्ञाकारी हृदय से उद्गत होती है।
परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बातें अपेक्षित करते हैं। यदि वे कहें, मैं ये कार्य करने के लिए अपना हृदय समर्पित नहीं करूंगा, तो प्रभु उन्हें स्वर्गीय बुद्धि के बिना उनकी कथित बुद्धिमान समझ के अनुसार आगे बढ़ने देते हैं, जब तक कि ये शास्त्र यशायाह 28:13 पूरा न हो जाए। तुम्हें ये नहीं कहना है, मैं प्रभु के मार्गदर्शन का अनुसरण उतनी ही सीमा तक करूंगा जहां तक वो मेरे निर्णय के अनुकूल है, और फिर अपनी ही धारणाओं को पकड़े रहूंगा प्रभु के स्वरूप के अनुसार ढलने से इनकार करते हुए। प्रश्न यही पूछा जाए, क्या ये प्रभु की इच्छा है, न कि क्या ये फलां की राय या निर्णय है। सेवकों के लिए गवाही 8:3।